साढ़े ग्यारह बजे भगवान राम का अभिषेक आरंभ होगा 11:30, और उसके पश्चात आरती होगी, उसके पश्चात प्रसाद। तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि हो सके तो आप भगवान राम की आरती के लिए भी उपस्थित रहना और बाद में प्रसाद भी ग्रहण करना। आज के दिन इस मंदिर का उद्घाटन भी हुआ था हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों के द्वारा। इस मंदिर का उद्घाटन भी हुआ था आज से 6 साल पहले। समय इतनी तेजी के साथ बीत जाता है, हम कई बार कहते हैं ये नया मंदिर है, नया मंदिर में, दिन पर दिन पुराना होते जा रहा है। 6 साल हो गए। और आज के दिन ही जो बड़ा प्रसिद्ध कृष्णा बालराम मंदिर है वृंदावन में, उसकी स्थापना भी रामनवमी के अवसर पर हुई थी श्री प्रभुपाद जी के हाथों के। आज के दिन ही रामनवमी के उत्सव पर 1975 में प्रभुपाद जी ने श्री श्री कृष्णा बालराम मंदिर का की स्थापना की थी। और आज के दिन ही 1974 में प्रभुपाद जी ने बॉम्बे हरे कृष्णा लैंड की भूमि पूजा की थी। रामनवमी के शुभ अवसर पर प्रभुपाद जी ने जो हरे कृष्णा लैंड आप देखते हो बॉम्बे में, प्रभुपाद जी को काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा उस जमीन को प्राप्त करने के लिए। और आज के दिन ही रामनवमी के अवसर पर प्रभुपाद जी ने बॉम्बे के मंदिर की भूमि पूजा की थी। आज के दिन ही वृंदावन मंदिर की स्थापना की श्री श्री कृष्णा बालराम मंदिर की। और आज के दिन ही जैसे मैंने कहा आपके राधा पार्थ सारथी मंदिर की भी स्थापना हुई थी इसी से इस 6 साल पूर्व 7th year स्टार्टिंग नाउ। सो टाइम फ्लाइज। हरे कृष्णा। तो आप सब जानते हैं जैसे बहुत शुभ दिन है आज। तो आज हम श्रीमद् भागवत के एक श्लोक पर को पढ़ेंगे। वैसे तो रामचंद्र जी के विषय में रामायण द्वारा बहुत गहरा ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो, और खास करके एक तुलसीदास जी के द्वारा रचित है और वाल्मीकि जी के द्वारा। पर हम जो वैष्णव भक्त हैं वाल्मीकि जी के रामायण को स्वीकार करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में संक्षेप रूप में व्यासदेव जी ने केवल 2 अध्यायों में रामचंद्र जी की लीलाओं का और उपदेश का वर्णन किया है। वैसे तो वाल्मीकि जी के रामायण में 24,000 श्लोक हैं, है ना? वाल्मीकि रामायण में, महाभागवत में 18,000 श्लोक हैं, पर वाल्मीकि जी के रामायण में 24,000 श्लोक हैं, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। पर भागवतम के 18,000 श्लोकों में लगभग शायद 100 श्लोक हैं रामचंद्र जी से संबंधित। तो हम जो आपको उपदेश देंगे वो देंगे श्रीमद् भागवतम पर निर्भर। तो ज्ञानंजना शलक्या चक्षुरन्मिलितनेन तस्मै श्री गुरवे नमः। राम लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न इति सम्यया। तो ये श्लोक हमें भागवतम के 9वें स्कंद में प्राप्त होता है। और भागवतम के 9वें स्कंद में भगवान रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन है। और शुकदेव गोस्वामी जी ने संक्षेप रूप में ही भगवान रामचंद्र जी की लीलाओं की चर्चा की है। जैसे हमने कहा वाल्मीकि जी ने तो 24,000 श्लोकों में रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन किया है। पर शुकदेव गोस्वामी जी ने केवल 2 अध्यायों में ही इन लीलाओं का वर्णन किया है। और शुक्रदेव गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान की दिव्य लीलाओं की चर्चा मैं केवल संक्षेप में कर रहा हूं, क्योंकि दूसरों के द्वारा तुम इस ज्ञान को सुन बैठे हो। जैसे कि वाल्मीकि जी की रामायण, उसमें बड़ी गहराई के साथ रामचंद्र जी की लीलाओं के विषय में आप पढ़ते हो, पर भागवतम में केवल संक्षेप रूप में ही इसकी रचना की गई है। तो ये स्पष्ट स्थापित किया गया है कि परम रामचंद्र जी भी स्वयं भगवान हैं, और प्रभुपाद जी जब इस शुभ अवसर पर अपना प्रवचन दे रहे थे लगभग आज से 30 साल पूर्व, तो उन्होंने भी ब्रह्म संहिता की एक स्तुति की रचना की, रमादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठम, जिसमें ब्रह्मा जी स्थापित कर रहे हैं कि रामचंद्र जी भी स्वयं भगवान हैं। भगवान के विषय में, भगवान के अवतारों के विषय में हम ज्ञान शास्त्रों से प्राप्त करते हैं। आज के जमाने में अनेक व्यक्ति ये दावा करते हैं कि वो भगवान के अवतार हैं, पर हम केवल उनको मान स्वीकार करते हैं जिनके विषय में शास्त्रों में प्रमाण हो। और शास्त्र में कहा गया है कि भगवान के अवतारों के अनेक विभाग हैं, पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुणावतार, मन्वंतर अवतार, युगावतार, शक्तिवेश अवतार, पर यहां भगवान स्वयं अवतारित हुए हैं। उन्होंने आपका अपने आप को प्रकट किया है रामचंद्र जी के रूप में, और जैसे आपने तात्पर्य में सुना, प्रभु जी स्पष्ट समझा रहे हैं कि ये जो हैं रामचंद्र जी, उनके भाई, ये सब हैं विष्णु तत्व, या भगवान स्वयं अवतारित हुए हैं रामचंद्र जी के रूप में। तो परम भगवान अलग अलग समय में अवतारित होते हैं। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्म से किनारी भवतीर भारत अभ्युन धर्म से तदात मनम सृजाम्य हम, कि अलग अलग समय में मैं अवतारित होता हूं, और किस लिए मैं अवतारित होता हूं, धर्म के नियमों की स्थापना करने के लिए। तो भगवान रामचंद्र जी आज के दिन प्रकट हुए थे, कब? त्रेता युग के आरंभ में। त्रेता युग चला हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग चला था लगभग 12 लाख सालों के लिए, उसके बाद आज द्वापर युग और फिर कलयुग। तो भगवान राम इस पृथ्वी पर आए थे, प्रकट हुए थे लगभग 20 लाख साल पूर्व, और आज भी हम उनकी लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान हैं, और उनकी जो लीलाएं हैं वो भी दिव्यम हैं। जैसे हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं दिन रात, तो भौतिकवादी व्यक्ति कई बार सोचते हैं कि किसी ने कुछ चमत्कार कर दिया है या मन की दुहाई कर दी है, जिसके द्वारा हम बार बार उसी नामों का उच्चारण करते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाली है इन दिव्य नामों में। इस कारण अब भगवान के नामों का उच्चारण दिन रात कर सकते हो और जब भी थकोगे नहीं। उसी प्रकार भगवान की लीलाओं की चर्चा, भगवान की लीलाओं की चर्चा दिन रात कर सकते हो। जो भागवत का संदेश आप सुनते हो या रामायण में भगवान की लीलाओं और उपदेश के विषय में पढ़ते हो, ये नहीं कि आप पहली बार सुन रहे हो, आप बचपन से सुनते आ रहे हो, तो जब भी इनके द्वारा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि ये है भगवान की दिव्य लीला, और हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम भगवान की लीलाओं में और गहराई के साथ डूबे। जैसे कि भगवद गीता के अंत में भगवान कह रहे हैं, सदा मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, उसका अर्थ है कि हम भगवान की लीलाओं का, भगवान के उपदेशों का, भगवान के दिव्य रूप का, इन सब विषयों का स्मरण करें। तो भगवान राम स्वयं भगवान है। पिता का नाम था महाराज दशरथ। महाराज दशरथ ने पूरे पृथ्वी पर राज्य किया था 60,000 सालों के लिए। और महाराज दशरथ जो थे पूरे पृथ्वी के राजा थे। आज तो छोटे छोटे देश हैं, है ना। आज इस पृथ्वी पर कितने देश हैं? लगभग 180-190। और प्रभुपाद जी कहते थे कि दिन पे दिन यूनाइटेड नेशंस में झंडा बढ़ते जाता है। मतलब जैसे एक देश स्वतंत्र होता है तो उनका झंडा भी उधर लगाते हैं। तो आज के जमाने में छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे राज्य हैं। तो प्राचीन समय में एक ही राजा थे पूरे पृथ्वी के, और महाराज दशरथ का शासन था। उन्होंने राज्य किया था पूरे पृथ्वी पर 60,000 सालों के लिए। और महाराज दशरथ जो थे वो भी स्वयं उच्च कोटि के भक्त थे। वाल्मीकि जी ने कहा है कि महाराज दशरथ थे राज ऋषि। राज ऋषि का मतलब राजा भी थे और साथ में ऋषि भी, साथ में संत भी। जब राजा संत हो तो समाज सुखी रहता है, और जब राजा या नेता दुष्ट व्यक्ति का, दुष्ट स्वभाव का हो तो समाज दुखी रहता है। आजकल आप समाज में क्या देखते हो? जो हमारे राजनीतिक नेता हैं ना राजा हैं ना ऋषि हैं। इसलिए समाज की जो प्रजा है अत्यंत दुखी है। वैदिक शास्त्र के अनुसार समाज को चलाने के लिए नेता को राज ऋषि होना चाहिए। आजकल तो हमारा सिस्टम है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। प्रभुपाद जी कहते थे, हिंदी में तो शायद ठीक नहीं बनेगा, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहते थे, दिस डेमोक्रेसी इज एक्चुअली डीमन क्रेजी। ये प्रजातंत्र ये है एक रूप से दुष्टों की सरकार। आप किसी प्रकार से जेब काटो, कुछ करो, चापलूसी करके इलेक्शन में जीत जाओ, और फिर 5 साल बाद 3 साल बाद फिर से चुनाव में लड़ो। करोड़ों अरबों रुपए आप जानते हो खर्च होते हैं इसी कार्य में। पर वैदिक साहित्य के अनुसार राजा को भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। एवं परंपरा प्रप्त में मान राजस्व विदु। ये जो दिव्य ज्ञान है भगवत गीता का, ये ज्ञान आ रहा था राजाओं की परंपरा द्वारा। और ये राजा जो थे राज ऋषि थे, और इसलिए समाज में किसी प्रकार की कमी नहीं, किसी प्रकार की आवश्यकता की कमी नहीं। जैसे आप भागवतम में पढ़ते हो कि एक समय बीच में एक दुष्ट विचार के राजा आ गए थे जिनका नाम था महाराज वेना, जिसका ये परिणाम हुआ कि समाज में उन्होंने सब यज्ञ इत्यादि रखवा दिया, और अंत में समाज की जो आवश्यकताएं थी लगभग सब समाप्त हो गई। फिर जब उनके बेटे पृथ्वीराज राजा बने, उन्होंने पहला आदेश ये दिया प्रजा को, भगवान का गुणगान करो, जिसके साथ हर प्रकार की आवश्यकता भी प्राप्त होने लगी। भगवद गीता में भगवान कहते हैं अन्नाद भवंती भूतनी अन्न अन्न संभव। अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, और वर्षा की प्राप्ति होती है यज्ञ या धर्म के नियमों के पालन के द्वारा। तो क्योंकि महाराज दशरथ राज ऋषि थे, इसलिए समाज की जो प्रजा भी थी अत्यंत सुखी थी, और किसी की प्रकार की कमी नहीं। महाराज दशरथ प्रभुपाद जी कहते थे जब भी किसी से मिलते थे यही कहते थे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में किस प्रकार उन्नति हो रही है। तो महाराज दशरथ ने यज्ञ किया था काफी लंबा, औलाद पुत्र प्राप्त करने के लिए। असल में जब परम भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, उनके ही सनातन भक्त माता पिता भाई बहन के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। तो अपने भक्तों को ये अवसर प्रदान होता है भगवान के साथ देवी लीला प्रकट करने के लिए। तो महाराज दशरथ की तीन पत्नियां थी, कुछ औलाद नहीं थी, राजा थे। तो उन्होंने बड़ा यज्ञ किया था, उन्होंने सपने में देखा था कि भगवान स्वयं प्रकट होंगे, उनके चार बड़े प्रसिद्ध पुत्र होंगे, हाँ, जो थे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तो भगवान राम स्वयं भगवान है, लक्ष्मण के साथ बड़ा स्नेह था, कभी भी आप दोनों को जुदा नहीं कर सकते थे। तो भगवान राम की अनेक लीलाएं हैं, पर व्यास भागवत में केवल थोड़ी लीलाओं की चर्चा है। भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं, दिव्य लीला प्रकट करते हैं, जिसकी तुलना ना कोई कर पाया है ना कर पाएगा। जो देवता हैं वो भी भगवान की दिव्य लीला की तुलना नहीं कर सकते। जन्म कर्म चा मे दिव्यम, भगवान का प्रकट और अप्रकट होना दोनों ही दिव्यम है। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण भी पृथ्वी पर थे, छोटी सी आयु में ही उन्होंने ऐसी दिव्य लीला प्रकट की थी, और बड़े बड़े देवताओं ने भी उनकी परीक्षा ली, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, इंद्र जी ने, पर अंत में वो सब असफल हुए, सब उनके शरणागत हुए। तो परम भगवान रामचंद्र जी ने भी अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी, और भगवान शब्द उनके लिए उपयोग किया जा सकता है जिनमें कि छह प्रकार के गुण हो असीम मात्रा में, जिनमें एक है वैराग्य या त्याग। तो भगवान महाराज दशरथ ने, जैसे हमने कहा, 60,000 सालों तक शासन किया था, और फिर बूढ़ी आयु की प्राप्ति पर उन्होंने सोचा अब मुझे ये राज्य की जिम्मेदारी, सबसे बड़े बेटे सब राज्य की जिम्मेदारी राम को सौंपने दो। और जब उनकी माँ कौशल्या ने ये सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई। उनकी तीन पत्नियां थी महाराज दशरथ की, क्षत्रिय राजों को अधिकार था एक से ज्यादा पत्नी रखने के लिए, पर आज के युग में ये अधिकार हमें नहीं है। तो अयोध्या थी भगवान की राजधानी। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को प्रकट किया ब्रज में, भगवान रामचंद्र ने प्रकट किया अयोध्या में। तो पूरे अयोध्या में ये खबर फैल गई थी कि रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होने वाला है अगले दिन, और पिता की यही इच्छा थी कि यह राज्य की जिम्मेदारी राम को दिया जाए। उनकी जो रामचंद्र जी की जो सौतेली मां थी जिनका नाम था कैकेयी, उनकी हार्दिक इच्छा ये थी कि उनके पुत्र भारत को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए, और कैकेयी ने दशरथ से यह वचन प्राप्त किया था कि अगर वो मांगेगी उससे कुछ तो दशरथ जरूर पूरा करेंगे। आज के जमाने में तो अगर आपका लिखित एग्रीमेंट भी हो तो उसकी खास कदर नहीं होती, पर प्राचीन समय में केवल वचन काफी था। तो कैकेयी जो है होशियार थी, और दशरथ से उन्होंने कहा कि ठीक समय पर मैं ओवर मांगूंगी आपसे। तो दशरथ भी खुश थे कि उनके प्रिय पुत्र रामचंद्र जी राज्य उनका राज्य आरंभ होने जाएगा। तो कैकेयी ने कहा अपने पति से, तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि मेरी वादे को पूरा करोगे? दशरथ ने कहा हाँ याद है। तो उन्होंने क्या कहा, मेरी इच्छा है क्या कि तुम राम को वनवास में भेजो 14 सालों के लिए, 1-2 साल के लिए नहीं, 1-2 महीने के लिए नहीं, 14 सालों के लिए, और उसकी बजाय मेरे बेटे भरत को यह राज्य की जिम्मेदारी सौंपी जाए। मेरे बेटे राज्य को भरत को यह राज्य की जिम्मेदारी सौंपी जाए। जब दशरथ ने यह सुना शोक में हो गए, क्योंकि उनकी इच्छा क्या थी, उनकी इच्छा थी कि यह राज्य की जिम्मेदारी रामचंद्र जी को दी जाए। खैर वचन दिया हुआ था, तो उन्होंने जब अपने बेटे राम को बुलाकर यह आदेश दिया, बेटा राज्य से अभिलाषक नहीं राज्य अभिषेक के बजाय आप जाइएगा जंगल में 14 सालों के लिए वनवास लेकर, उन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। तो भगवान के अनेक गुणों में एक क्या है, वैराग्य, त्याग। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कैसे जाऊं, सारा समाज उम्मीद कर रहा है कि मेरा राज्य से राज्य अभिषेक होगा। उन्होंने तुरंत ही पिता के आदेश को स्वीकार किया। श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया जाता है जिस प्रकार एक आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने शरीर को त्यागता है। वैसे तो शरीर को कोई नहीं त्यागना चाहता, कोई नहीं त्यागना चाहता शरीर को, हाँ चाहे धनी हो या गरीब हो, हर व्यक्ति की यही इच्छा रहती है कि थोड़ी देर और हम जी लें। पर जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है उसको शरीर त्यागने में कुछ कोई भय नहीं रहता। जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है या इस देह में या अगली देह में उसका कर्तव्य है भगवान की सेवा। और शास्त्र का उपदेश है अंते नारायण स्मृति, जीवन की तैयारी इस प्रकार से करनी चाहिए कि मृत्यु के समय हम परम भगवान का स्मरण कर पाए। तो जिस प्रकार एक आत्मज्ञानी व्यक्ति शरीर को त्यागने में डरता नहीं, उसी प्रकार भागवत में कहा गया है, जब व्यासदेव जब कहा गया कि जब रामचंद्र जी को आदेश दिया गया कि आप घर अयोध्या छोड़कर जाओ जंगल में, तुरंत ही वो तैयार हो गए। और उन्हें वनवास के लिए भेजा कहां, अयोध्या से दूर, कि वो योग। और प्रभुपाद जी ने कहा कि कैकेयी के दो विचार थे, 14 साल इसलिए कहा कि उन्हें डर था कि अगर थोड़े समय में वापस आ जाए तो मेरा बेटा का शासन ठीक स्थापित नहीं होगा। उन्होंने ये सोचा कि 14 सालों तक शासन करेंगे तो जब राम लौटेगा भी तो किसी हालत उसे हटा नहीं सकेंगे। पर और उन्होंने कहा कि दूर जाओ, अगर पास होते तो वापस आ सकते थे बड़े आसानी के साथ। उनकी इच्छा नहीं थी कि किसी प्रकार से अयोध्या के राज्य में राम का किसी प्रकार से प्रभाव हो। पर रामचंद्र जी ने स्वीकार किया ये आदेश को, ये नहीं कहा कि कैसे बुरा देखेगा इत्यादि। तो रामचंद्र जी गए वनवास में, और उससे पहले भी उन्होंने कई अद्भुत लीलाओं को प्रकट किया। जैसे कि एक समय उन्होंने एक बहुत भारी धनुष जिसे उठाने के लिए 300 व्यक्तियों की आवश्यकता थी, उस धनुष को उन्होंने बड़ी सरलता से उठाकर अपने दो हाथों से तोड़ दिया। जैसे हमने कहा था भगवान के 6 गुण हो, गुण है असीम मात्रा में, ऐश्वर्य से समाग्रस्य वीर ऐसा यशाश्रय, वीर ऐसा वो सबसे ज्यादा शक्तिमान है। तो भगवान रामचंद्र जी ने ये बड़ी सरलता के साथ इस धनुष को तोड़ा। जब भगवान परशुराम, उनके साथ भी भगवान राम ने बड़ी सरलता के साथ परशुराम को भी हराया, तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं। फिर सीता देवी को किडनैप अपहरण किया था रावण ने। रावण अर्थ है, रावण शब्द का अर्थ है जो कि दूसरों को रुलाता है, पर असल में रावण थे भक्त, पर भगवान के दिव्य लीला को ज्यादा मधुर बनाने के लिए ये रूप उन्होंने ग्रहण किया था, क्योंकि भगवान के भक्तों को ही अवसर प्रदान होता है दुष्टों का रोल भी करने के लिए। तो रावण के 10 सिर थे, और रावण ने जब सीता की खूबसूरती के विषय में सुना तो सीता के प्रति आकर्षण हुआ और आए उन्हें अपहरण करने के लिए। पर रावण असली सीता को नहीं छू पाए, रावण जिस सीता को उठाकर ले गए थे उस सीता के विषय में कहा गया है वो थी माया सीता, असली सीता नहीं, और असली सीता को कोई छू नहीं सकता रामचंद्र जी के अलावा। जब भगवान को सूचना प्राप्त हुई कि सीता श्रीलंका में है, तो श्रीलंका पहुंचने के लिए भगवान ने फिर अपनी दिव्य लीला प्रकट की। जैसे कि श्रीलंका पहुंचने के लिए उन्हें ब्रिज बनाना पड़ा, 3 दिन जाकर नदी के किनारे वो खड़े थे, सागर ने उनको कुछ आदर नहीं दिया। फिर क्रोधित आंखों से जब भगवान राम ने देखा, सागर घबरा गया। सर सागर ने कहा कि मैं आपके किस आदेश का पालन करूं, और फिर भगवान ने पत्थर फेंके और माउंटेन पीक्स पहाड़ों की पर्वत की चोटियां और पत्थर फेंके। अक्सर अगर आप पर्वत की चोटियों को फेंको और पत्थर को फेंको तो डूब जाएंगे, है ना, पर भगवान राम की कृपा से इच्छा के अनुसार ये पर्वत की चोटियां और पत्थर डूबे नहीं पर तैर रहे थे। ये भी भगवान की अद्भुत लीला है। खैर ये लीला समझना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार लाखों लाखों लोग हैं जो कि तैर रहे हैं ब्रह्मांड में भगवान के आदेश के अनुसार। तो भगवान जैसे हमने कहा था जब आते हैं अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं, और भगवान राम की सेना में थे कौन, भगवान की सेना में थे बंदर जिनके नेता थे हनुमान, और हनुमान के साथ नीला सुग्रीवा अनेक और बंदर थे। इन बंदरों में केवल एक ही योग्यता थी कि पहाड़ों की चोटियों को फेंकना, और धनुष केवल 2 व्यक्तियों को ही चलाना आता था, वो थे राम और लक्ष्मण। इसकी तुलना में रावण की जो सेना थी उसमें हर प्रकार के उसमें प्रसिद्ध सेनापति थे, आधुनिक हथियार थे। आज हम सोचते हैं कि असली आधुनिक हथियार हैं हमारे पास, पर प्राचीन समय में जो हथियार थे आज के विज्ञानियों के हथियारों से ज्यादा तेज थे, उन्हें छोड़ा जाता था मंत्रों के उच्चारण के साथ, और कई हथियार थे जो केवल निशाने को ही मारते थे और कहानी। मान लो 100 आदमी बैठे हैं और आपका निशाना है बीच में, तो वो हथियार केवल उसी व्यक्ति को घायल करेगा या चोट देगा और किसी को नहीं। इस हथियार का नाम था ब्रह्मास्त्र। ये थी सुविधा। तो रामचंद्र जी की सेना में प्रसिद्ध सेनापति थे और सारे आधुनिक हथियार थे। प्रभुपाद जी भागवत में सुनाते हैं कि दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक है आध्यात्मिक या दैव और दूसरा है अपुरुषकार या भौतिक। तो जो भक्त हैं वो देवी शक्ति की शरण लेते हैं। जैसे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले दोनों सेनाओं को ये छूट थी, या वो चूम सकते थे भगवान को या भगवान की सेना को। भगवान ने निर्णय ले लिया था कि मैंने इस युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेना। तो दुर्योधन ने क्या सोचा कि भगवान ने तो पक्ष नहीं लेना था, हमें उनकी सेना लेने दो, सारे प्रसिद्ध सेनापति लेने दो। और जो पांडव भाई थे उन्होंने क्या सोचा, हमें तो कृष्णा चाहिए, राखे कृष्णा माने के माने कृष्णा राखे के। और भगवत गीता में कहा गया जहां कृष्ण है अर्जुन है वहां विजय भी प्राप्त होगी। तो जो युद्ध हुआ, हालांकि रावण की सेना में हर प्रकार की सुविधा थी और प्रसिद्ध सेनापति थे, अंत में विजय किसकी हुई, भगवान राम की। भगवान राम की विजय हुई और सीता को लेकर वापस लौटे कहां, अयोध्या के प्रति। तो भारत जो थे राज्य कर रहे थे, पर राज्य कर रहे थे किसकी तरफ से, अपने भाई की तरफ से। हालांकि उनकी माता की इच्छा थी कि चापलूसी करके किसी प्रकार से राम को भेज दिया जाए वनवास में। भारत जो थे उन्होंने राज्य किया अपने भाई की तरफ से, उनके दो चप्पलों को रखा। और जो भारत है भोजन के लिए क्या खा रहे थे, गौमूत्र से पकी हुई जवा, बार्ली कुक्टिन काउज यूरिन, जवा को जो गौमूत्र से बनती है वो खाते थे बस। आजकल पूरे पृथ्वी के राजा छोटे देश के नहीं, और ये था उनका त्याग का जीवन। आज तो साधारण व्यक्ति भी खाता है तो 10 चीजें खाता है, पर जितने समय के लिए उनके भाई राम वनवास में थे, भारत ने केवल गौमूत्र से बनी हुई जवा खाया बस, और कुछ नहीं। और शरीर को कैसे ढकते थे, गहनों के साथ, महंगे वस्त्रों के साथ नहीं, शरीर को ढक रहे थे वृक्ष की छाल के साथ। देखो उनका त्याग, शरीर को ढका वृक्ष की छाल के साथ, और खाने के लिए गौमूत्र से बना जवा, गौमूत्र से बन मिली हुई, बस यही खाया उन्होंने 14 सालों के लिए। और पूरा शासन किया उनके भाई राम के नाम पर। तो जब भगवान का वनवास समाप्त हुआ तो उनके स्वागत करने के लिए अयोध्या में पूरी सरकार वहां पहुंची, सारे भगवान भारत पहुंचे सबसे पहले, भगवान के दो चप्पलों को सिर में लेकर उनके सारे मंत्री वगैरह लौटे और उनका अयोध्या में राज्य भगवान राम का आरंभ हुआ। उनके पिता दशरथ ने राज्य किया था 60,000 सालों के लिए, बेटे राम ने राज्य किया 11,000 सालों के लिए। रामचंद्र जी के राज्य के समय पूरी प्रजा को वो अपनी औलाद जैसे पाल रहे थे। आज की स्थिति में राजा नेता और प्रजा में दिन रात का अंतर है, है कि नहीं? अगर आपको राजा या नेता का दर्शन चाहिए तो आपको टेलीविजन में लेना पड़ेगा, है कि नहीं? सच बात है। आजकल राजाओं और नेताओं को अपनी सुरक्षा की इतनी चिंता रहती है कि अगर सड़क में उनकी गाड़ी भी जा रही है तो चारों तरफ से सब सड़कें बंद हो जाती हैं, है कि नहीं? तो प्राचीन समय में यह स्थिति नहीं थी। राजा का दर्शन लेने के लिए कोई भी नागरिक किसी समय भी महल में जाकर राजा का दर्शन ले सकता था। तो भगवान रामचंद्र जी पूरी प्रजा को अपनी उल्लाद जैसे पाल रहे थे और वो सदा ये देखते रहते थे कि प्रजा में कोई दुख तो नहीं है किसी प्रजा किसी नागरिक को। और अगर उन्हें सूचना प्राप्त होती थी कि किसी प्रकार का दुख कोई अनुभव कर रहा है तो तुरंत वो पहुंच जाते थे उसको हल करने के लिए। आज भी आपने देखा होगा कि हमारे राजनीतिक नेता खास करके चुनाव के समय राम राज्य की चर्चा करते हैं, है ना? हालांकि राम राज्य था हाँ लाखों साल पूर्व, पर आज भी राम राज्य की चर्चा करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि राम राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का शोक या दुख नहीं था, कोई रोग पीड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं। आज आप क्या देखते हो कि हम चिंता से भरे हुए हैं, सच बात है। हर व्यक्ति चिंता से भरा हुआ है, अंग्रेजी में इसको स्ट्रेस बुलाते हैं। तो हम सब चिंता से, पूरी प्रजा जो थी भगवान राम की
हरि बोल
उपासक थी। एक समय एक सज्जन आए रामचंद्र जी के महल में एक शिकायत लेकर, उनके बेटे का देहांत हो गया था। तो उन्होंने आकर राजा से कहा, पिता के जीते हुए बेटे का देहांत कैसे हो गया? तो मतलब प्रजा जो थी किसी समय भी राजा के पास आ सकती थी। तो रामचंद्र राम राज्य के समय पूरी प्रजा अत्यंत सुखी थी क्योंकि भगवान राम के सब उपासक थे। एक ब्राह्मण था जिन्होंने जो रोज रामचंद्र जी का दर्शन लेकर अपना भोजन खाता था। तो रामचंद्र जी जब अयोध्या के बाहर गए थे एक समय दो तीन हफ्तों के लिए, तो इस ब्राह्मण ने कुछ खाया नहीं। इस ब्राह्मण का नियम था रोज जाकर भगवान राम का दर्शन लेना फिर भोजन खाना। तो जब रामचंद्र जी लौटे अपनी यात्रा से तो उनके भाई लक्ष्मण ने कहा कि इस ब्राह्मण ने दो हफ्ते से कुछ खाया नहीं क्योंकि आपका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था अयोध्या में। तो भगवान राम ने अपनी ही मूर्ति जो उन्होंने अलमारी के अंदर रखी थी वो उठाकर क्योंकि दे दी उस ब्राह्मण को और कहा, तुम इस आर्चर विग्रह की उपासना करो, इस आर्चर विग्रह और मेरे में कोई अंतर नहीं। जैसे हम इस आर्चर विग्रह का पक्की उपासना करते हैं इस मंदिर में, सीताराम लक्ष्मण हनुमान राधा कृष्ण गोणिताय, आर्चर विग्रह भगवान का ही रूप है जो कि मूर्ति के रूप में प्रस्तुत होता है हम बद जीवों को सेवा का अवसर देने के लिए। तो भगवान राम ने स्वयं इस ब्राह्मण को वो मूर्ति दी और कहा, तुम इस मूर्ति की पूजा करो, इस मूर्ति में और मेरे में कोई अंतर नहीं। कई कम बुद्धि के व्यक्ति जब भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं भगवान की मूर्ति को देखकर क्या कहते हैं, हे ये तो पत्थर की है, इसमें भगवान थोड़ी हैं, कई मायावादी विचार के लोग कहते हैं। प्रभु भगवान की असीम शक्ति को नहीं समझ पाते, ये नहीं समझ पाते कि भगवान चाहे तो अपने आर्चर विग्रह के रूप में भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। भगवान के आर्च, भगवान उनके आर्चर विग्रह में, भगवान के नामों में, भगवान की तस्वीरों में कोई अंतर नहीं। और इसका प्रमाण है ये घटना कि भगवान राम ने स्वयं अपनी मूर्ति दी और कहा इस मूर्ति के रोज पूजा करो, इस मूर्ति में और मेरे में कोई अंतर नहीं। जब रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने और सीता देवी जी ने अपने सारे गहने बांट दिए थे, किसे? अयोध्या के ब्राह्मणों को। आज अब उम्मीद कर सकते हो कि आपके राजनीतिक नेता अपनी संपत्ति बांट देंगे गरीबों को? रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और नोसिंग को क्या कहते हैं, केवल सीता देवी ने एक नासिया अपने लिए रखी, नग नाक में पहनने, क्या कहते हैं, नथुनी, अच्छा केवल सीता ने एक नथुनी अपनी रखी, बाकी सारे गहने बांट दिए ब्राह्मणों को। भगवान राम ने अपनी सारी संपत्ति बांट दी ब्राह्मणों को। तो आप कहोगे बड़े भाग्यशाली ब्राह्मण थे भाग्यशाली, क्योंकि उन्होंने ये सब संपत्ति स्वीकार करके वापस लौटा दिया राम को और सीता देवी को। आज की स्थिति में कभी उम्मीद कर सकते हो कि अब ब्राह्मणों को अपनी संपत्ति बांटो वो लौटा दें? रामचंद्र जी सीता देवी ने सब गहने वगैरह सब कुछ बांट दिया था। भगवान राम ने ब्राह्मण से पूछा मांगो जितनी जमीन चाहिए, ब्राह्मण ने केवल उतना ही लिया जितना कि आवश्यक था और उसे अधिक नहीं। और ब्राह्मणों ने सारे गहने लिए और फिर वे गहने जो है वापस कर दिए। भक्तों के हृदय में एक ही वर की इच्छा रहती है, वो कि हमें भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त हो। ध्रुव महाराज को भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था क्योंकि उन्होंने बड़ी गहरी तपस्या की। ध्रुव महाराज ने कहा मैं तो टूटे हुए शीशे को ढूंढ रहा था, मुझे एक असली हीरा प्राप्त हो गया है। भगवान नरसिंह देव ने जब प्रहलाद से पूछा कुछ वर मांगो मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट भुगतना पड़ा, प्रहलाद ने कहा मैं कोई व्यापारी नहीं था, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो केवल एक ही वर दो, क्या? कि मुझे सदा आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हो। ये रहती है भक्त की इच्छा कि सेवा का अवसर प्राप्त हो। चैतन्य लीला में हम पढ़ते हैं कि एक समय चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े एक भक्त थे जिनका नाम था खुला बेचा श्रीधर, जिनकी बहुत छोटी सी आमदन थी, पर एक बड़ा गुण यह था कि 24 घंटे वो हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे, रात को भी उच्चारण करते थे, जिसके कारण जो पड़ोसी है शिकायत करते थे अरे कहीं शायद इसे भूत कोई सता रहा है, हमें सोने नहीं दे रहा। तो एक समय चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया अपने प्रसिद्ध पांच प्रसिद्ध भक्तों को और खुला बेच शेदार से पूछा मांगो क्या ऐश्वर्य चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो एक ही वर दीजिएगा कि हर जन्म में मुझे आपकी संगत प्राप्त हो और आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। तो भगवान राम और सीता ने अपनी सारी संपत्ति गहने वगैरह बांट दिए, पर जो ब्राह्मण हैं उनका यह भाव रहता है क्या, सादा जीवन और ऊंचा विचार। ब्राह्मण केवल उतना ही ग्रहण करना चाहता है जितना कि आवश्यक हो। जैसे कि ईश्वर उपनिषद में कहा गया ईशावाशयदाम सर्वम, व्यक्ति को उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना कि आवश्यक हो और उससे अधिक बांट देना चाहिए दूसरों को। अगर इस प्रकार का सिद्धांत समाज में हो तो समाज में कोई गरीब व्यक्ति नहीं होगा। पर आज हम समाज में क्या देखते हैं, समाज की 10% आबादी के पास 90% संपत्ति है और 90% आबादी के पास 10% संपत्ति है। इसलिए समाज में इतना युद्ध है, इतना क्राइम है, हिंसा इत्यादि है। तो ब्राह्मणों ने संपत्ति ली, उसाई संपत्ति वापस लौटा दी। भगवान राम स्वयं देखते थे कि शासन करते हुए कि समाज का शासन ठीक चले। उदाहरण के लिए अयोध्या में सड़कों को रोज साफ किया जाता था, किसके साथ? सुगंधी जल के साथ। सुगंधी जल के साथ अयोध्या की सारी सड़कों को रोज धोया जाता था, रोज। और भगवान राम स्वयं वहां उपस्थित होते थे यह देखने के लिए कि सड़कों की सफाई ठीक हो रही है या नहीं। आज अगर आप प्रधानमंत्री या किसको बोलो सड़कों की सफाई की तरफ जा नजर रखो तो हंसेंगे, है ना? वो हंसेंगे। पर इस उदाहरण से आप देख सकते हो कि भगवान राम कितना चिंतित रहते थे प्रजा के स्वार्थ के लिए। जो नेता है उसे केवल अपने सुख का नहीं सोचना पर प्रजा के सुख का सोचना है। और जो प्रजा थी वो अत्यंत प्रसन्न थी जब वो देखती थी कि उनके जो नेता थे उन्हें किस प्रकार उलाज जैसे पाल रहे थे। तो भगवान राम के शासन के समय अयोध्या की हर सड़क को रोज धोया जाता था सुगंधित पानी के साथ। और ये सुगंधित पानी कैसे गिराया जाता था? हाथियों के सूंड के द्वारा। जैसे आजकल आपके पास स्प्रिंकलर्स हैं वगैरह, तो भगवान ने ऐसा प्रबंध किया है कि हाथी के सूंड के द्वारा शावर जैसे पानी बरसता है। तो हाथियों के सूंड के द्वारा सुगंधित पानी से अयोध्या की सड़कों को धोया जाता था।